आप चाहती हैं कि आपके घर से शैतान चला जाए? बस 5 पॉइंट नोट कर लीजिए क्विकली कि हम अपने घरों से शैतान को कैसे भगवाएं। नंबर एक, घरों को अल्लाह की नाफरमानी के कामों से ख़त्म कर दें, यानी नाफरमानी के कामों को ख़त्म कीजिए, शैतान भाग जाएगा। नंबर टू, घर में सूरत बकरा की तिलावत रखें। आप अपने बच्चों में बांट दें, खुद बांट लें, पहला रुब एक पढ़ेगा, दूसरा दूसरा, कसरत से पढ़ते जाएं और तिलावत कम से कम चला लें तो भी है। फिर तीसरी चीज़ है कि घर में दाखिल होते वक्त और खाना खाते वक्त बिस्मिल्लाह भी पढ़ी जाएगी। और एक दुआ है, घर में दाखिल होते हुए बिस्मिल्लाह ही वलजना, वो पूरी दुआ याद करें, और घर से निकलते वक्त बिस्मिल्लाह ही तवक्कल तो अल्लाह ही वला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्ला। जब बंदा ये दुआ पढ़ के निकलता है तो फरिश्ता बोलता है, हुदी तव वकी तव कुफी ता, तुझे हिदायत भी दे दी गई, तुझे बचा भी लिया गया और तुझे किफायत भी की गई। तो ये दुआएं हैं। फिर इसी तरह एक और चीज़, घरों में कुत्ता ना रखा जाए। इब्ने माजा की रिवायत है 3651 के, जिस घर में कुत्ता होता है वहां से फरिश्ते चले जाते हैं। और इसी तरह पांचवी चीज, घर को लहव और लाइब से बचाया जाए। सूरत लुकमान आयत 2, वमिनन नासी मई यश्तरी लहवल हदीसी। तो लहवल हदीस हर वो चीज़ है जो अल्लाह की याद से बंदे को गाफिल कर देती है और हक से दूर रखती है। अल्लाह ताला आपको मुझे इन सारी चीज़ों से बचा के रखे। और देखिए कि शैतान हमारा दुश्मन है ना, बहुत बड़ा दुश्मन है, तो इससे अपने आप को बचाना इंशाल्लाह। अब आप देखिए पीछे कितने रह गए हैं, ईमान बिल कुतुब, ईमान बिल आखिरा, ईमान बिल रसुल और ईमान बिल कदर, तकदीर की बातें। अब इन सब चीज़ों को पढ़ना और समझना हमारे अपने हक में फ़ायदे की चीज़ है ना। ये जो टॉपिक है ना ईमान बिल कुतुब का, किताबों पर ईमान लाना, इसमें से पहली किताबों के मामले में सिर्फ चंद बातें नोट कर लें। नंबर एक, अल्लाह ने किताबें मुख्तलिफ औकात में इंसानों की हिदायत के लिए नाजिल की। हर नबी और वक्त के रसूल के ऊपर कभी सहाइफ की सूरत में, कभी किताबों की सूरत में। चार मशहूर किताबें आपके वर्कबुक में जगह बनी हुई है, वहाँ नाम जल्दी से लिख लीजिए, कौन सी किताब किस नबी पे उतरी और कुरान में ये बात किधर है। तौरात मूसा पर उतरी थी, माईदा 44 और फुरकान 35, हवाला लिखा हुआ, इसकी फिक्र ना आप करें। जबूर हज़रत दाऊद पे उतरी, बनी इसराइल 55। इंजील ईसा पर, सूरत हदीद 27। और कुरान मजीद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, सूरत अलनाम आयत 19। सवाल पैदा होता है, आसमानी किताबों का हमसे मुतालबा क्या है? ईमान तो हमने लाना है। ये टॉपिक इतना मतलब कॉमन है कि इस पे आपने मेरे से भी ज्यादा दफा सुना होगा, किताबों पे ईमान लाना। सवाल पैदा होता है कि ये किताबें हमसे क्या तकाजा करती हैं। अभी मैंने चंद दिन पहले एक दर्स कहाँ दिया है जिसमें बताया था कुरान आपसे क्या चाहता है, बॉस्टन के अभी जो लेक्चर्स थे, तो उसमें कुरान की टू सक्सेस मैंने वो तीनों मुतालबे बताए थे। नंबर एक, अल्लाह के बंदे बन के रहो। दूसरी बात है, दुनिया में अल्लाह का पैगाम आम करो। और तीसरी बात है कि इसको अपने जिस्म से शुरू करके पूरी दुनिया पे नाफिज कर दो। ये तीन बड़े तकाजे हैं, लेकिन अल्लाह की किताबें, हर दौर की जो किताब थी वो ये तकाजा करती हैं पूरी किताब को माना जाए, पिक एंड चूज ना हो, अपनी मर्जी से कुछ को लेना और कुछ को छोड़ना ये ना हो। अब ये तो होगी सारी बातें किताबों की। सवाल पैदा होता है, कुरान मजीद जो हमारी प्यारी किताब है, ये क्या किताब है और इसके साथ हमारा क्या मामला होना चाहिए? तो पहली बात है कि कुरान फाइनल वर्जन है हिदायत का, लास्ट एंड लीस्ट, बस दोनों चीज़ें हैं। अल्लाह की आखिरी किताब है, सूरत अनाम 92। ये रेफरेंसेस लिख लीजिए, आपको 7 पॉइंट्स लिखाऊंगी कुरान क्या है। नंबर एक, आखिरी किताब है। इसके बाद कोई कहता है किताब उतरी है तो वो जुल्म करता है अपने ऊपर भी, दूसरों पे। दूसरी बात, सूरत आराफ 158 और सबा 28 है, और वो कह के ये रहती दुनिया तक के लिए, किसी एक खास और जगह वक्त के लिए नहीं है। फिर नेक्स्ट थिंग है कि तब्दीली और तगैयुर से पाक है, महफूज तरीन किताब है कह ले, फुस्सिलत 41-42। फिर इसी तरह से ये घड़ा हुआ नहीं है, यानी फैब्रिकेटेड नहीं है, और जो पिछली किताबों ने तब्दीलियां कर दी थी उसको कुरान ने चेंज कर दिया, यानी उसकी वेरिफिकेशन है, सूरह यूसुफ 1:1:1। और फिर इसके बाद सूरत माईदा 48 से क्या पता चलता है, कुरान मुहैमिन है, गाइड है। किस चीज़ पे? पिछली किताबों पे। जो चीज़ें कुरान के मुताबिक हैं आज की बाइबल में वो ठीक हैं, और जो गलत हैं गोया के वो चेंज हो गई। और छठी चीज़ क्या है, कुरान सीने में महफूज हो जाता है, सूरह हिजर 9 है। अल्लाह ने इस किताब को इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, और आखिरी बात जिस पे अल्लाह करे कि हम मुसलमानों को यकीन आ जाए दुनिया और आखिरत की कामयाबी का इन्हिसार इस किताब के ऊपर अमल करने में है। सूरत माईदा 15:16 है। आज पुरानी किताबें क्यों नहीं नज़र आती? क्योंकि वो बदल चुकी थी। सिफात क्या है या फजीलत क्या है कुरान पाक की? कुरान पाक को अल्लाह ने बहुत ही खूबसूरत बनाकर भेजा है, मुकाम इसका बहुत आला है, लेकिन कुरान पाक में ही कुछ फजीलतें हैं। 8 पॉइंट्स नोट कर लीजिए। कुरान क्या है? नंबर एक, सबसे बड़ा फजल। सूरज यूनस 58 आती है किसी को याद? कुल बिफदलिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। हकीकत है कि कुरान इस कायनात पे अल्लाह का सबसे बड़ा फजल है। फिर इसी तरह से आप देखिए कि कुरान पाक जो है ना, क़यामत के दिन शिफात करेगा। ये हवाला आपके पास लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है? सही मुस्लिम 1847। नंबर दो, इसकी फजीलत, कुरान पाक का माहिर मुअज़्ज़ज़ फरिश्तों के साथ होगा। मुस्लिम 798 और बुखारी 4937। फिर कुरान मजीद की तिलावत करने वाले के लिए फरिश्ते नाजिल होते हैं आसमान से। बुखारी 5018। ये पूरा वाक्या बड़ा दिलचस्प एक सहाबी का। फिर साहिबे कुरान के ऊपर रश करना जायज़ है। बुखारी 7529 और मुस्लिम 815। कुरान मजीद के एक लफ्ज़ पर 10 नेकियाँ मिलती हैं। तिरमिजी 2910। कुरान मजीद सीखने और सिखाने वाला दुनिया में सबसे बेहतर इंसान है। इसकी दलील बुखारी 5027 और इसी तरह से अबू दाऊद में भी है। फिर इसी तरह कुरान मजीद का हाफिज जन्नत में बुलंद दर्जे पर फायज होगा। अबू दाऊद 1464। और आठवीं बात, कौमों के उरूज और जवाल का जरिया कुरान है। मुस्लिम 817। आखिरी बात, कुरान से हमारा क्या ताल्लुक हो? हम इससे क्या लें, चूमे चाटें, इसके तावीज़ बनाएं? नहीं, हमारा ताल्लुक इस कुरान के साथ क्या होना चाहिए, इसको हिदायत का जरिया बनाएं और इस किताब को पूरे का पूरा लें, इसकी दावत दूसरों को भी दें, और दिलों में उतरने वाली नसीहत है ये, तो दूसरों को इसके जरिए से नेकी का हुक्म और बुराई से रुकने की दावत दें। ये शिफा है, इसके जरिए लोगों की बीमारियों को और परेशानियों को दूर करने की कोशिश करें, और इस पर यकीन रखें कि सारी दुनिया के लोग मिल भी जाएं तो इस किताब से बेहतर किताब नहीं ला सकते। फिर एक हमारे इससे ताल्लुक ये होना चाहिए कि दिन या रात के किसी हिस्से में इसकी तिलावत ज़रूर करें, इसको अपनी ज़ुबान में समझें, मानी मफहूम पे गौर करें, कुछ हिस्सा इसका हिफ्ज़ करें, क्योंकि हदीस में आता है उस सीने को अल्लाह आग से बचा लेगा जिसमें कुरान होगा। फिर एक और हमारा इसके साथ ताल्लुक़ क्या होना चाहिए कि हलाल को हलाल और हराम को हराम समझें, इसके वईद की आयतों को सुनकर खौफजदा हो जाएं और रोएं, और खुशखबरी की आयतों पर अपने आप को जमाएं और उस पर खुशी का इजहार करें, और इसकी तालीम को आम करने में हर मुमकिन हिस्सा डाल दें। अल्लाह करे कि मैं और आप इसमें शामिल हो जाएं। लेकिन ये सारा कुछ कब होगा? जब हम खुद अपने अंदर वो सिफात लाएंगे जिसको पीछे पड़ चुके हैं, ईमान, इस्लाम और एहसान के दर्जे पे और तकवा पे होंगे। अल्लाह करे कि हमारा इस किताब पे पूरा का पूरा ईमान हो जाए। तो ये ईमान बिल कुतुब की एक हल्की सी वजाहत थी। ईमान बिल रसुल, तिलका रसुल उफद्दलना। रसूल कौन होते हैं? नंबर एक, अल्लाह की तरफ से भेजे हुए। अल्लाह इंसानों के आला तरीन मुकाम को रिसालत का मुकाम कहते हैं, ठीक है? रसूलों पर ईमान लाना चाहिए। इनकी ज़िंदगियों का मकसद लोगों को अल्लाह का पैगाम देना होता है। सबसे खुशकिस्मत तरीन लोग होते हैं और इनके ज़रिए से अल्लाह काम ले लेता है। कुल कितने रसूल हैं? कुरान पाक में 25 रसूलों के नाम हैं। सूरत निसा में देख लीजिए कि कौन सी आयत है जिसमें 18 नबियों का जिक्र है, और उलुल अज़म पैगंबर 5 हैं, हज़रत इब्राहिम, मूसा, ईसा, हज़रत नूह, इब्राहिम, मूसा और ईसा, और सारे अम्बिया में सबसे बढ़कर मुकाम व मरतबा नबी सल्लम का है, जिसको हमने पीछे ईमान बिर रिसालत में भी पढ़ा था। आप आखिरी नबी थे, नबियों के सरदार थे, और अल्लाह ने आपके लिए ये सब कुछ रखा। नबी सल्लम की खसूसियात, खातिमुल अंबिया थे, सूरत अहज़ाब 40, आप आखिरी नबी थे। दूसरी बात, आप तमाम इंसानों के सरदार थे, तिर्मिज़ी 3148, और इसके बाद आप सब इंसानों के लिए नबी बनाकर भेजे गए थे। सूरत अल अराफ 158 अगले पेज की पहली लाइन है। तो गोया कि ईमान बे रिसालत जो है ये एक पूरा टॉपिक है। इसको चूंकि हम पढ़ चुके पीछे अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह में, इसलिए यहाँ इस पर इतना ही काफ़ी है। वापस जरा से अपने इस चार्ट पे आइए, अकीदे की इस कड़ी को देखिए कि हम कहाँ पहुँच गए, कि अल्लाह ताला ने हमें ईमान बिल्ला भी पढ़वा दिया, ईमान बिल कुतुब भी हल्का सा टच किया, जितना मर्जी टच कर लें। मेरा ख्याल है कुरान के टॉपिक में हमारे सबसे ज़्यादा लेक्चर्स हैं वेबसाइट पे, फेवरेट टॉपिक की किताब है, तो वो सब चीज़ें आप इधर से किसी से भी सुन सकते हैं। फिर इस तरह ईमान बिल रसूल पढ़ लिया, अब क्या रह गया पीछे? आखरत और तकदीर, दो बेहतरीन टॉपिक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अकायद के मौजू में एक बुनियादी जुज़ क्या है? ईमान बिल आखिरा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 13 साला मक्की दौर का एक तीसरा अहम टॉपिक ईमान बिल आखिरा था। और यहाँ ये भी नोट कीजिए कि मक्का वालों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो इतराज़ात थे, उसमें एक बहुत बड़ा, अगर सबसे बड़ा ना भी कहूँ तो वो एतराज़ क्या था कि मैं युहिल इज़ाम वहिया रमीम, कौन ज़िंदा करेगा इन हड्डियों को जबकि ये गल सड़ चुकी। तो आखरत, मरने के बाद दोबारा जीना और मरने के बाद अपनी मौजूदा इस ज़िंदगी का हिसाब देना लेना, ये उस दौर के लोगों के लिए एक अचंभा बन चुका था। हालांकि वो हज़रत इब्राहिम की नस्ल से होने का दावा भी करते थे, हज़रत इस्माइल की तो ब्राह रास्त नस्ल में से थे, लेकिन जब कौमों में बेअमली शुरू होती है ना, तो उसका नुकसान क्या होता है? दो दफ़ा तो सूरत बकरा में अल्लाह ताला ने फरमाया कि वत्तकु यौमन ला तजजी नफ्सुन अन नफ्सन शैया। जो खराबियां आती हैं आज, अगर उम्मत मुस्लिमा की बेअमली को सामने रखे, तो एक जुमला सबसे पहले ईमान बिल आखिरा के साथ ये लिख लीजिए कि जब अकीदा आखरत बिगड़ता है तो कौमें बेअमल हो जाती हैं। मैं आपको एक बहुत ही प्रैक्टिकल मिसाल दूंगी, और ये सारी बातें आप ये इस पहले पैराग्राफ में लिखिए। और वो क्या है, किसी बच्चे को ये यकीन हो कि इम्तिहान वाले दिन जो पेपर आने वाला है, नंबर एक मेरा टीचर मुझे पहले से बता देगा, दूसरी बात है पर्चा देने के दौरान मेरी मदद कर देगा, जिसको बूटी लगवाना कह सकते हैं, नकल मरवाना, तीसरी बात है कि जिस शख्स ने मेरे पेपर को चेक करना है, थोड़ा सा उसको ले देकर नंबर लगवा लूँगा, क्या वो पढ़ेगा? नहीं पढ़ेगा। ये है ईमान बिल आखिरा के ख़राब होने की वजह, कि जब ये चीज़ें अकायद में आ जाती हैं, फलां आएगा तो बचा लेगा, फलां का पल्लू पकड़ लेंगे, मेरे बदले में वो चला जाएगा, नबी सिफारिश कर देंगे, एक बच्चे को हाफिज़े कुरान बना दो तो वो आपकी सिफारिश कर देगा, और ख़ानदान में एक फलां शख्स शहीद हो चुका तो फिर मैं उसी के साथ चल पड़ूंगी, तो उसके बाद अकीदे आखिरत बिगड़ जाता है। आज उम्मत मुस्लिमा आपका ख्याल है झूठ क्यों बोलती है? अगर उनको पता चले ना कि झूठ बोलने वाला मोमिन ही नहीं रहता, और झूठ की बू से रहमत का फरिश्ता 1 मील दूर चला जाता है, तो कभी झूठ ना बोले। और यहाँ दुनिया में एक टिकट का मिलना 50-60 डॉलर या कुछ और इस तरह के जो हमें मिलती हैं ट्रैफिक के बेतरतीबियों पे जो चार्ज होता है, अगर ये यकीन ना हो तो हम में से आधे लोग भी सीट बेल्ट ना बांधें। ओवर स्पीडिंग से कौन बचता है? वही बचता है जिसको पता है कि ओवर स्पीड हो गई, कैमरे में आ गया तो घर में टिकट आ जाएगा। बिल्कुल ईमान बिल आखिरा को आप ऐसे ही समझ लीजिए कि आखिरत पर ईमान बंदे का किबला है। आप यहाँ आए, पढ़ा, फिर आपका टेस्ट लिया गया और आपकी जो भी मदद की जा सकी, लेकिन इसके बाद आपसे कुछ चीज़ों का मुतालबा हुआ। आपको यकीन है ये सब होगा तो आप भी सारे रूल्स को मानेंगे, और पता चले टेस्ट दे दो ना दे दो, आपके नंबर उसमें उसके इसमें और इसी तरह की चीज़ें। तो सारी बात का खुलासा, आखरत के दिन से क्या मुराद है, बड़ा बड़ा करके लिख लें और इसको पहले अपने अंदर जज्ब करें, फिर लिखें। आखरत के दिन से मुराद इस ज़िंदगी का आखिरी और आने वाली ज़िंदगी का पहला दिन। याद रखिए, हर रोज़ सुबह होती है और शाम होती है, और ज़िंदगी यूं ही तमाम होती है ना। हम सब की ज़िंदगी में एक ऐसा दिन आने वाला है जो हमारी इस ज़िंदगी का आखिरी लेकिन दूसरी ज़िंदगी का पहला दिन होगा। बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि ट्रेन की आखिरी बोगी से उतरकर पिछली ट्रेन की पहली बोगी में सवार होना है। बड़ा मुश्किल मरहला होता है। दुनिया में आने का दिन बहुत ख़तरनाक होता है, इसी तरह दुनिया से जाने का दिन भी बहुत मुश्किल दिन होगा। और उस दिन सारा कुछ जो ज़िंदगी में किया था, फ़मैयामल मिसकाल ज़र्रतिन खैरिन यरा और शर्रिन यरा, इस पर ईमान होना है, आखरत पर ईमान लाना। कोई सीधा रह नहीं सकता जब तक उसका अकीदा आखरत दुरुस्त ना हो। और अल्लाह ताला ने इस दुनिया में आपको मुझे आज़ादी देकर भेजा, इरादे की, इख्तियार की, इसका सही इस्तेमाल कर लें या गलत कर लें ये आपकी मेरी मर्जी है। लेकिन सूरत आल इमरान 185 में हम पढ़ चुके, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा। हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है और तुम यकीनन क़यामत के रोज़ अपने पूरे पूरे अजर दिए जाओगे। फ़मन ज़ुहज़िहा नारी व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, बस जो जहन्नुम से बचाकर जन्नत में दाखिल किया गया बस वही है कामयाब। वमल हयातु दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, दुनिया की ज़िंदगी इस धोखे के सिवा कुछ भी नहीं। तो सवाल पैदा होता है कि आखिरत पर ईमान लाने से क्या मुराद है? तो इसका जवाब क्या है? मरने से लेकर क़यामत के दिन के सारे मराहिल से गुजर कर या जन्नत या जहन्नम में दाखिल किए जाने के हर मरहले पर ईमान लाना मुराद है। इससे किसी एक स्टेप को छोड़ नहीं सकते, पुल सरात से गुजरने का इनकार नहीं कर सकते, हौज़े कौसर के पानी का इनकार नहीं कर सकते, शिफात और इसी तरह से क़यामत के दिन के खड़े होने की। हम सब को इस बात पर यकीन होना चाहिए कि मरने के बाद हमारे साथ ये सारे मामले होने वाले हैं। इंशाल्लाह अगले स्टेप पे हम देखेंगे कुछ मराहिल भी होंगे। अभी एक सवाल पैदा होता है कि ये सब शुरू कहाँ से होगा? तो जहन में रखिएगा कि मरने के साथ ही शुरू हो जाता है हर बंदे का इनफरादी तौर पे, लेकिन इज्तमाई तौर पे क़यामत के साथ आखिरत शुरू हो जाएगी। इससे पहले आप मैं जो कर चुके सो कर चुके, जो हो गया सो हो गया, लेकिन क़यामत कब आएगी? अल्लाह ने ये बात नबी को भी नहीं बताई। कुरान पाक में कई सवालात हैं क़यामत के आने के वक्त के बारे में, लेकिन फरमाया कि आपको इसका वक्त नहीं बताया गया, बल्कि अल्लाह के नबी ने कहा कि उसकी तैयारी तुमने क्या की है। ये गैब का मामला है, अल्लाह ने आपको मुझे नहीं बताया। बुखारी में ये बात मौजूद 50 नंबर हदीस में। क्या क़यामत की कोई निशानियाँ भी हैं? बिल्कुल हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क़यामत की जो अलामतें बताई हैं वो दो किस्म की हैं, अलामाते कुबरा और अलामाते सुगरा। कुबरा 10 हैं, उनको नोट करवाऊंगी आपको। वैसे तो हम दिन में कई दफ़ा क़यामत देखते हैं, सो के उठते हैं, फसलें पकती हैं, फिर पीली होती हैं, फिर मुरझा जाती हैं, फूल खिलते हैं और मुरझा जाते हैं। लेकिन याद रखिए कि क़यामत आएगी और इस दुनिया के बाद एक नई दुनिया में हम दाखिल हो जाएंगे। तो क़यामत की निशानियों में पहली निशानी जो हमें अहादीस से मिलती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत और वफ़ात। आपने फरमाया कि मेरे बाद अब क़यामत ही आएगी। ये सही मुस्लिम की रिवायत 7403। दूसरी अलामत है शक्के कमर, जो अल्लाह के नबी के दौर में हो चुका। सूरत कमर की पहली आयत इसकी दलील है। तीसरी, दरियाए फरात से सोने के पहाड़ का निकलना, ये मुस्लिम की रिवायत है 7272। ये अब निशानियाँ वो हैं जो आएंगी इंशाल्लाह आगे। फिर चौथी है, दरिंदों का इंसानों से बात करना, तिर्मिज़ी 2181। यानी ये एक दाबतुल अर्ज़ निकलेगा जो इंसानों से बातें करेगा। फिर क़यामत से पहले बहुत सारी जंगें लगेंगी, मुलाहमात कहते हैं इनको, मुलाहमा भी कह सकते हैं। मुस्लिम की रिवायत 7312 नंबर की। आज देख लीजिए, एक जंग अभी पूरी नहीं होती तो दूसरी शुरू हो जाती है, ये इसकी दलील है। फिर छठी लामत है इमाम महदी का ज़हूर, ये आपको नासिरुद्दीन अल्बानी की रिवायत से भी मिलता है, अबू दाऊद में भी है, 4285 नंबर। फिर इसी तरह से दज्जाल का खरूज, मुस्लिम 7384। ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल, आज भी वो जिंदा है, आसमान से दुनिया में आएंगे, ये सही मुस्लिम की रिवायत है 7278। और यहाँ नोट करें, 100 के करीब तवातुर दर्जे की अहादीस है, कंटिन्यूस है, जिसमें हज़रत ईसा का दुनिया में आना साबित है। फिर भी कोई शक करे तो उसकी मर्ज़ी। फिर नवी याजूज माजूज का निकलना, सूरत अलम्बिया 96-97। फिर सूरज का मगरिब से तुलू होना, सही मुस्लिम 7397। फिर ज़मीन का धंसना, यानी जैसे ज़मीन अंदर चली जाएगी, सिंक करना कहते हैं ना, सिंक, अर्थ इज सिंकिंग। मशरक़ मगरिब और जजीरतुल अरब में 3 मुख्तलिफ जगहों पे ज़मीन ऐसे धंसेगी कि पूरी पूरी बस्तियां अंदर चली जाएंगी, ये सही मुस्लिम 7285 नंबर की हदीस है। और देख लीजिए इसकी अलामतें तो दिख रही हैं। फिर 12वीं अलामत क्या है? धुआं, पूरी दुनिया में एक स्मोक होगा, सही मुस्लिम 7397। नेक्स्ट दाबतुल अर्ज़ का नाम भी आता है, सही मुस्लिम 7383। पहले जो मैंने कही थी वो मुख्तलिफ जानवरों का बात करना है, अब ये किस फॉर्म में होगा अल्लाहु आलम, लेकिन ये बात हमें अहदीस से मिलती है। नेक्स्ट का एक पाकीज़ा हवा चलेगी, मुसनद अहमद की ये रिवायत है, जिससे पता चलता है कि एक हवा चलेगी और नेक लोग मरते जाएंगे और आखिर में बदतरीन लोग जब रह जाएंगे तो उन पर क़यामत आएगी। फिर एक अलामत है कि मक्का को वीरान कर दिया जाएगा, खाना काबा को गिराया जाएगा, सही मुस्लिम 7305 नंबर। फिर मदीना भी वीरान हो जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट है बुखारी 1874। और आखिरी बात, हिजाज से एक आग निकलेगी और शाम की तरफ लोगों को हांकेगी, सीरिया की तरफ 7118 नंबर है। क़यामत का आगाज़ कैसे होगा अगर आप अपने हिसाब से देख लें, सूर फूकेगा, आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ बढ़ती जाएगी, चीज़ें लरसने लगेंगी और इंसान सारे मरते जाएंगे, आसमान फटेगा, सितारे झड़ेंगे, हर चीज़ का कह लीजिए एक एक्सल टूट जाएगा, और पानी ज़मीन पे है और कब्रें खुदी हुई हैं। ये पूरा 30वां पारा है, अभी आपने पढ़ा ये, तो लिहाजा क़यामत के मनाजिर की 30वें पारे की सूरतों की रोशनी में देखिए। लेकिन ये याद रखिए, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, जो मरता है ना उसकी क़यामत तो फ़ौरन आ ही जाती है। आपका मेरा मौत पर यकीन होना चाहिए, अपनी मौत के अलावा हमें सबका यकीन होता है। तो सवाल पैदा होता है कि मौत के बाद रूह जब निकलती है तो उसके साथ क्या होता है, क्योंकि मैं आप किसी वक़्त भी दुनिया से जा सकते हैं। ये इतनी बड़ी हकीकत और इतनी बड़ी बेबसी है कि जिसके आगे कोई बंदा बोल नहीं सका। आज भी दुनिया के हर मसले में इख्तलाफ होगा, मौत के मौजू पे कोई इख्तलाफ नहीं है, कोई ये नहीं सोच सकता कि नहीं, क्योंकि इसकी दलील दिन में हर दिन हजारों लोग मरते हैं। किसी मजहब का बंदा ये नहीं कह सकता कि मौत नहीं है, मौत का इनकार कोई नहीं करता। ये अलग बात है कि मरने के बाद क्या होगा, इसका इनकार किया जाता है। तो मौत क्या है? वापसी का सफर, फना नहीं है मौत। बहुत सारे लोगों ने मौत को फना समझ लिया, फना होती तो क्या अच्छा था। वो कहते हैं ना, मर के भी ना चैन पाया तो किधर जाएंगे। जब एक इंसान की मौत का वक्त करीब आता है तो मलकुल मौत अपने फरिश्तों के साथ उसके पास मौजूद होते हैं, और बहुत ही खूबसूरत अहादीस है, मैं आपको सिर्फ चंद जुमलों में ही बता सकती हूँ। वैसे इस पर एक लेक्चर मौजूद है, जर्नी ऑफ द सोल, रूह का सफ़र, तो उसमें पूरी तरतीब से वो हदीस बयान की है कि जिसमें अल्लाह के नबी एक मौके पे, और हदीस का अगर नंबर लिखना चाहें तो बरा बिन आज़ब से ये रिवायत है, अल्लाह के नबी एक मौके पे किसी कब्र के पास सब बैठे थे, कब्र खोदने का इंतज़ार था, तो बेसिकली अभी थोड़ी सी देर थी, तो आपने उस वक्त को ज़ाया नहीं किया और साथियों को जो डिटेल्स बताई वो मैं अपने लफ्ज़ों में आपको बता सकती हूँ कि जब किसी की मौत का वक्त करीब आता है तो उसके सामने फरिश्ते ज़ाहिर होते हैं। नेक इंसान है तो बड़े खूबसूरत चमकते चेहरों वाले फरिश्ते और सूरज की रोशनी, जिनके पास जन्नत का कफन होता है, जन्नत की खुशबुएं होती हैं, फिर उसकी रूह को उसमें लपेटा जाता है। पहले उससे बल्कि मलकुल मौत पास बैठकर बड़े प्यार से उसकी जान निकालता है कि ए नफ्स मुतमईना चल, या ये तो हन नफ्सुल मुतमईना के लफ्ज़ सूरह फजर के एंड पे भी हैं। क्या पता चला, आपने फरमाया कि रूह इतने आराम से निकल जाती है जैसे पानी की मश्क है ना, उसका ढक्कन ढीला हो जाए, कतरा कतरा निकल जाती है, उसको पता ही नहीं चलता। फिर मलकुल मौत उसको लेते हैं, फिर फरिश्ते पलक झपक भी उसको मलकुल मौत के हाथ में नहीं रहने देते, बल्कि उसको लेकर जन्नत से आए हुए कफन में लपेटते हैं, खुशबू मलते हैं उसको, कहते हैं उसके जिस्म से ऐसी खुशबू आती है कि जैसे खुशगवार हवा का झोंका है। फिर उसके बाद वो फरिश्ते कहते हैं आओ इसको ऊपर की सैर कराते हैं, फिर वो उसको ऊपर लेकर जाते हैं, जो फरिश्ते भी रास्ते में मिलते हैं सारे उसके पास चले जाते हैं, और उसकी खुशबू सूंघकर फरिश्ते पूछते हैं ये पाकीज़ा रुख किसकी है। ज़रा सा रुक कर सोचिए, अगर दुनिया में कोई पाकीज़गी होगी हमारी ज़ात से तभी तो ये खुशखबरियाँ होंगी ना। या हमारे तो उस वक्त रो धो रहे हैं और कफन का नहलाने धुलाने का इंतजाम कर रहे हैं, उस रूह को कोई फिक्र नहीं कि पीछे क्या हो रहा है, उसका एक ऊपर का सफ़र है, हत्ता के फिर पहले आसमान तक पहुंच जाती है वो रूह, फिर दरवाज़ा नॉक किया जाता है, फिर वो पूछा जाता है ये कौन है, फिर आवाज़ आती है। और अगर आपको सूरत अल अराफ़ की वायत याद हो, मुझे नंबर इस वक्त याद नहीं है, कि ला तुफत्तहु लहुम अबवाबु समाए वाति वल अर्द, कि जो लोग तकजीब करते हैं झुटलाते हैं उनके लिए जन्नत के दरवाजे नहीं खुलते या आसमानों के दरवाजे नहीं खुलते, तो उसकी तफसील में भी यह हदीस अक्सर कोट की जाती है। बहरहाल उसका नाम बताया जाता है, वो बड़े प्यार से ऊपर खुलता जाता है, फरिश्ते मिलते हैं, फिर पहले आसमान से दूसरे आसमान के फरिश्ते उसके साथ लग जाते हैं, होते होते सातवें आसमान तक वह रूह पहुँचाई जाती है, और फिर वहाँ तो आपको पता है कि अल्लाह ताला का अर्श है, अल्लाह ताला कहता है कि मेरे इस बंदे का नामे अमाल इल्लीयीन में रख दो और इसको वापस ज़मीन पे छोड़ कर आओ। अभी इसका हिसाब बाकी है, अभी कब्र का वक्त बाकी है। ये जो आलम बरज़ख़ है ना, ये कब्र में ही गुजारता है बंदा, सिवाय शहीद के। शहीद कब्र में नहीं होता, उसकी रूह भी ऊपर ही जाती है। तो बहरहाल वापस जिस्म उसके रूह में डाली जाती है। इतनी देर में जो घर वाले हैं वो इंसान को कफनाने दफनाने के बाद, यानी कफन भी दिया जा चुका, उसको गुसल भी कर दिया, नमाज भी पढ़ा दी, कब्र में डाल दिया। अब आगे अगर कब्र के हालात को भी आप देखें तो वो भी इसी में ही आते हैं। कब्र में दो फरिश्ते आते हैं जिनको मुनकर और नकीर कहा गया। फिर वो सिर्फ तीन सवाल करते हैं, मन रब्बू का, मर रसूलू का, मा दीनू का। तेरा अल्लाह कौन, तेरा रसूल कौन और तेरा दीन क्या है? अच्छा बंदा था, सबके जवाब देता है। इतने में फिर आवाज़ आती है कि इस बंदे को जन्नत का बिस्तर दे दो, यानी उसके लिए कह लीजिए कि फिर जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। उसकी कब्र जन्नत के दरवाजों में से एक दरवाजा बन जाती है। ये जन्नत इस तरह उसकी कब्र के अंदर कह लीजिए कि एक एक्सटेंशन ऑफ जन्नत है। और फिर वहां उसको कहा जाता है कि नम का नौमतिल अरूस, सो जाओ जैसे दुल्हन सोती है, क्योंकि सारी जिंदगी तो काम करके आया ना। अक्सर लोग कहते हैं ना काम, सोना, आराम, तो कब्र में इतना सोएंगे के दिल भर जाएगा। अगर इस दुनिया में हम अपने वक्त का सही इस्तेमाल कर गए तो इंशाल्लाह हमारी कब्र बड़ी खूबसूरत होगी। फिर आवाज़ आती है इसके कब्र में जन्नत का बिस्तर बिछा दो, इसको जन्नत के कपड़े पहना दो, खुशबुएं हवाएं आने लगती हैं। और उसकी कब्र में एक बड़ा खूबसूरत इंसान आ जाता है। ये उसको पूछता है तुम कौन हो, वो कहता है मैं तो दुनिया में भी तुम्हारे साथ था। वो कौन? मैं तुम्हारे नेक अमल हूँ, मैं तुम्हारी अच्छी चीज़ें हूँ। दुनिया में भी तुम्हारे कंधे पे, यानी राइट साइड पे जो नेकियाँ होती हैं ना, वो कह लीजिए कि एक मुजस्सम बनाई जाती है और उस बंदे की कब्र की वहशत को दूर किया जाता है। ज़रा सोचिए आप, कई लोगों को तन्हाई से डर लगता है ना, और कई ऐसे भी लोग हैं कि जो डिप्रेशन में चले जाते हैं। कब्र में भी तन्हाई नहीं होगी। आन इस वख्शति फ़ी कब्री, दुआ भी एक कि अल्लाह मेरी कब्र की वहशत को मानूस कर दे। अल्लाह आन इस वख्शति फ़ी कब्री। तो बहरहाल फिर वो उसके साथ रहने लगता है और वो इंतज़ार करता है क़यामत का। उसको कहा जाता है वो जो जन्नत, बल्कि ऊपर आसमानों पे, जो मैंने उसको स्किप कर दिया, ज़्यादा नहीं बताया आपको, पूरी डिस्क्रिप्शन है उसको। जन्नत का एक टूर दिया जाता है, पहले से मौजूद लोग जो नेक थे फौत हुए उनकी रूहों से मुलाकात होती है। और उसको कहा जाता है कि अब तुम इंतज़ार करो। और उसका दिल क्या करता है कि फौरन क़यामत आए और मैं वहां पहुंच जाऊं। लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख भी है तो बड़ा तकलीफ दे, लेकिन सुनना और मानना तो पड़ता है ना। तो वो बहुत सख्त वक्त होता है, और जो कुछ इधर हुआ है ना, वो उसका अपोजिट है। उसके लिए तो पहले ही आसमान से दरवाजे बंद हो जाते हैं और उसकी रूह को जिस्म में पटख दिया जाता है। कब्र में जहन्नुम का टाट आता है, बदबूदार, उसकी रूह में से बू आती है। फरिश्ते उसको जब बाहर निकाल रहे होते हैं तो गुस्से से निकाल रहे होते हैं, यही है बन नाजियाती गरका, बन नाशिताती नश्ता। और उसकी तकलीफ कितनी होती है, आपने फरमाया गीली ऊन को जब सीख में डालकर निकालो तो चीथड़े निकल जाते हैं ना। इस तरह उसकी रूह बड़ी मुश्किल से निकलती है, और जिधर से गुजरती है लोग उसके ऊपर लानतान करते हैं, हत्ता के फिर सिज्जीन जो जमीन के घड़ों में है वहाँ उसके नामे अमाल के पास, यानी उसके उसके सारे बुरे अमलों को भेजा जाता है। इसके भी पास कब्र में दो फरिश्ते आते हैं और वो भी सवाल यही करते हैं, लेकिन इसको इन तीन सवालों का जवाब भी नहीं आता। और आप कहते हैं इस कोर्स में अभी तक हम इन्हीं सवालों के जवाब में, मन रब्बू का, मर रसूलू का, माँ दीनू का, यही है माँ दीनू का, इस्लाम क्या है, इस्लाम ए टू जी है, आज हमने पढ़ा ही नहीं। अल्लाह जाने उनके साथ क्या मामला होगा, अल्लाह जानता है, अल्लाह के बंदे जानते हैं। मुझे तो ये लगता है कि ये खुशकिस्मती है कि हमें दुनिया में पता चल रहा है कि मरने के बाद हमारे साथ क्या होने वाला है, और फिर उसके बाद कब्र अल्लाह की बना, या कह लीजिए कि जहन्नुम की एक घड़ी है या जन्नत का एक बाग है। आलमे बरज़ख़ है ये सारा, आड़ को कहते हैं, पर्दे को कहते हैं, और जहाँ लोग वक्त की कैद से आज़ाद हो जाएंगे। और कब्र के हालात को पढ़कर सहाबा रोते थे। हज़रत उस्माने गनी की दाढ़ी आंसुओं से तर हो जाती थी कब्र का सुन के। कहते थे ये आखरत की घाटियों में से पहली घाटी है, अगर ये ख़राब हो गई तो क्या बनेगा। ज़रूरत है इस बात की, तो चंद पॉइंट्स नोट कर लीजिए कब्र में जाके क्या होने वाला है कुरान की आयतों की रोशनी में। पहली बात है, अल्लाह ने हर बंदे को कब्र देनी है। सूरत अब्बसा आयत 21, सुम्मा अमातहू फ़अकबरा। फ़र्क इतना है, कोई जला दिया गया, जहाज के एक्सीडेंट में मारा गया, पानी में डूब गया, वही उसकी कब्र है। ज़मीन की मट्टी ना भी मिली तो भी बाकी चीज़ें तो होंगी। फिर दूसरी बात ये कि इस पर यकीन रखिए कि कब्र में सवाल जवाब होंगे। तिर्मिजी की रिवायत 1071। और अभी भी मैंने आपको जो हदीस सुनाई है उससे भी आपने देख लिया कि किस तरीके से ये होगा। फिर इसी तरह से ये भी जहन में रखिए कि मरने के बाद जब इंसान कब्र में जाएगा तो उसको ऐसे लगेगा कि दुनिया की ज़िंदगी बहुत थोड़ी थी, बहुत छोटी थी। कब्र में हर रोज़ उसका ठिकाना दिखाया जाता है, जन्नत का होगा या जहन्नुम का। बुखारी की रिवायत 1379, ये खुद लिख लीजिए रेफरेंस इसका, क़यामत के दिन वहाँ इंसान के साथ कब्र में होता है। और कब्र के अजाब से अल्लाह के नबी पनाह मांगा करते थे। सही मुस्लिम में एक दुआ है 1325 की, आप उसको भी याद कर सकते हैं कि अल्लाह मुझे कब्र के अजाब से बचा ले। अब इसके बाद क्या होगा? कब्र में जाकर नेक बंदे को तो सुला दिया जाता है, बुरा इंसान जो है उसके साथ मामला सख्त है, लेकिन यहाँ से फिर महशर के मामले शुरू होंगे। किस तरीके से एक बंदा इस दुनिया से पहुंच, अब इसके बाद क्या होगा मैदान महशर, स्टेप्स ऑफ द मैदान महशर। बहुत सारी चीज़ों से भी हम नाचना है। हमने अभी असाबुल जमीन से असाबिकून अलवलून तक 2 दिन का सेमिनार न्यू जर्सी में किया था, उसका डे टू का दूसरा लेक्चर, दो थे उस दिन। पहले में हमने आयतें पढ़ी थी कुरान पाक की, फमिनहुम जालिमुल्ली नफ्सी से लेकर आगे, लेकिन जो उसका बी पार्ट था ना वो इसका जवाब है, स्टेप बाय स्टेप। अब इसके बाद जैसे आपको यहाँ से पाकिस्तान जाना है तो रास्ते में किधर कहाँ क्या रुकना, वो सारी चीज़ें ना वो सारी उस लेक्चर में पढ़ी गई हैं। बाद में मौका मिले अपने नोट्स में उसके पॉइंट नोट कर सकते हैं, लेकिन खुलासा यही है कि मैदान महशर में वो सब कुछ होगा जो हमने नबी सल्लम की अहादीस में और कुरान की आयतों में सुना था। कैसे क्या होगा? अल्लाह अकबर, सूर फूकेगा, सब उठकर खड़े हो जाएंगे, नंगे पांव नंगे बदन रब के सामने पेश किए जाएंगे। 6527, सूरज बहुत करीब होगा। सही तरगीब की रिवायत है 3587, अल्लाह ताला ब्राह रास कलाम करेंगे उस दिन। बुखारी 1413, फिर इसी तरह क़यामत के दिन हज़रत मूसा सबसे पहले उठकर खड़े हो जाएंगे, उनको या तो बेहोश किया नहीं जाएगा या बेहोशी हुई और आप पहले उठ गए। बुखारी की रिवायत है 3414। फिर इसी तरह से मैदान महशर कहाँ होगा? सही बात यह कि ये मुल्क शाम में होगा। बहुत सारे लोग हमारे कल्चर में मैदान अरफात को कहते हैं, लेकिन अगर आप अहादीस को गौर से पढ़े तो वो शाम का इलाका है। और फिर वहाँ अगले पिछले सब जमा होंगे, एक नई ज़मीन बनाई जाएगी, सफ़ेद होगी रोटी की तरह, मैदे की रोटी की तरह होगी, कि जिसमें कोई निशान नहीं होगा, उस पर किसी ने खून नहीं बहाया होगा। ये सही मुस्लिम की रिवायत है जिल्द 8 में 128 नंबर। फिर इसी तरह से याद रखिए सबको उनके अमाल के मुताबिक अलग अलग किया जाएगा। एक आवाज़ आएगी और पुकारने वाले के पीछे लोग जाएंगे, सूरह ताहा 108, अकेले अकेले जाओगे सब, सूरह अनाम 94। मोमिनों और मुत्तकियों और फाजिरों का अंजाम मुख्तलिफ होगा, सूरह मरियम 85-86। नंगे सर नंगे पांव नंगे बदन और बेखतना किए उठाए जाओगे, यानी सेम वो कैफियत जिसमें बच्चा दुनिया में आता है। सही मुस्लिम 7198। आप चाहें तो इसमें इकबाल केलानी साहब की जो सीरीज़ है ना उससे भी फ़ायदा ले सकते हैं, उसमें आलमोस्ट सारे ही रेफरेंस मौजूद हैं कि किस तरह होगा, और वो 50,000 साल का एक दिन होगा। सूरत मारिज आयत नंबर 4 में ये बात आप पढ़ते हैं, उस दिन कोई सिफारशी नहीं होगा। अब यहाँ देखिए सिफारिश की भी दो सवाल डाले हैं ना, शिफात से क्या मुराद है और उसकी इकसाम। तो याद रखिए कि शिफात एक उम्मीद है कि ज़िंदगी भर जो हम ना करके आए शायद इसके बावजूद हम बच जाएं। दुनिया में भी ऐसे ही होता है, जब पूरी कोशिश करते हैं काम नहीं हो रहा, कहते हैं कोई ढूंढो बंदा, कोई है जो हमारी मदद कर दे। तो शिफात भी यही चीज़ है कि कम दर्जे वाला बंदा आला दर्जे पे पहुंच जाए या जहन्नुम से निकाल कर जन्नत में ले जाया जाए। और उसे हर बंदे की ख्वाहिश होगी कि जो मिल रहा है ना उससे अच्छा मिल जाए। फिर वहाँ हौज़े कौसर भी होगा, अल्लाह के नबी से मुलाकात की जगह, यानी आपकी मेरी अल्लाह के नबी से जो अब इसके बाद पहली मुलाकात पॉसिबल है वो मैदान हशर में हौज़े कौसर पे होगी। वहाँ आप अपनी उम्मत को पानी पिलाएंगे, और बहुत ही उसकी खूबसूरत डिस्क्रिप्शन है, उस लेक्चर में मैंने उसको भी थोड़ा सा एलेबोरेट किया था। लेकिन अगर आप खुद पढ़ना चाहें हौज़े कौसर के लिए, तो एक तो सूरत कौसर, उसमें तो इशारा ही है बस इन्ना तैना कल कौसर, लेकिन सही बुखारी में अल्हम्दुलिल्लाह आपको डिटेल से मिलेगा। आप इससे रेलेवेंट टॉपिक खोल लीजिए, 6579 हदीस, और इसी तरह उसके इर्द गिर्द की हदीसें हैं। लेकिन याद रखें कि दीन में नई बातें करने वाले हौज़े कौसर से पानी नहीं पी सकेंगे। अब शिफात वही बात है, कमी बेशियों को दूर किया जा रहा है, अल्लाह के हुक्म से होगी। सूरत बकरा आयत 255 कौन सी है? आयतुल कुर्सी। क्या कहा गया उसमें? उससे पहले क्या है? मन जल्लजी यशफ़ो इंदहु इल्ला बिज़नी। तो शिफात होगी तो सिर्फ अल्लाह के हुक्म से होगी। फिर याद रखिए कि शिफात शिफात है, हुक्म नहीं है। मैंने दो तीन जुमले वहाँ भी बोले, मैं आपकी तफसीर में भी यहाँ भी है, सिफारिश ये नहीं कि कबूल हो, कर दो, नहीं मानते। दुनिया में क्या हर बात मानी जाती है? दुनिया में दुआ है, कर लो, कबूल होती है कि नहीं। आखिरत में वो शिफात है, कोई कर ले तो ना करे। ये असल में एक ऑनर है जो अल्लाह नेक लोगों को और अम्बिया कराम को देगा कि चले फैसले अल्लाह करेगा। दुनिया में शिफात होती है फैसला करने से पहले। अदालत में भी फैसला नहीं सुनाया लेकिन आप सिफारिश ले आए, बदल गया फैसला। आखिरत में शिफात होगी, फैसले अल्लाह पहले करेगा किस किस को बख्शना है। आप मौके दे देगा, चलो आओ भाई तुम इसको कह दो, मैं इसको कह दूं। जैसे आप यहाँ गिफ्ट्स रख लें और कहें जी किसी मेहमान खसूसी को, आइए हमारे स्टूडेंट्स को गिफ्ट्स दे दें, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, अमूमन होता है ना ऐसा। तो क्या वो मेहमान खसूसी का फैसला होता है किसको देना है? नहीं, जिस पे जो लिखा हुआ है, बस ये है सिफारिश। दुनिया में चूंकि अम्बिया और रसूल को वो मुकाम नहीं मिला, लोगों ने उनकी वो कदर नहीं की, लोगों ने उनको वो इज्जत नहीं दी, मारा सताया, क्यामत के दिन अल्लाह ताला उनको एक ऑनर देगा। शिफात इज जस्ट लाइक ऑनर जो अल्लाह नेक लोगों को देगा, फैसला फिर भी पीछे उसमें अल्लाह का ही है। तो बहरहाल शिफात की कई किस्में हैं, नोट कर लीजिए। सबसे पहली बड़ी शिफात है जिसको नबी सल्लम की तरफ जोड़ा जाता है, ये मुकामे महमूद पर फाइज किए जाने की बात है, और इसमें अल्लाह के नबी को ऑनर दी जाएगी कि आप अल्लाह से जाकर दुआ करेंगे और कहेंगे कि हिसाब शुरू हो जाए। सूरह बनी इसराइल 79 और मुस्लिम 475 में इसका इशारा मौजूद है। फिर दूसरी सिफारिश होगी जन्नत का दरवाज़ा खुलवाने के लिए। सबसे पहले अल्लाह के नबी दरवाज़ा खुलाएंगे, फिर आपकी उम्मत दाखिल होगी, फिर बाकी उम्मतें जाएंगी। तीसरी सिफारिश उनके लिए होगी जो गुनाहों की वजह से जहन्नुम में डाल दिए जाएंगे, फिर अल्लाह के नबी की शिफात से उनको बचा लिया जाएगा। और चौथी शिफात होगी कुछ अरसा जहन्नुम में जलने के बाद दोबारा उनके जिस्मों को कोयले की शक्ल में निकाला जाएगा, नहरे हयात में गुसल दिया जाएगा, फिर जिस्म उगेगा और दोबारा उनको जन्नत में डाला जाएगा। और एक पांचवी किस्म भी है जन्नत में ही, दर्जे बुलंद करें अपग्रेडिंग के मानों में, तो वो औलादों के माँ बाप के लिए, रिश्तेदारियों और इन सारे नामों के साथ होगी। फिर मिज़ान का भी जिक्र आप पढ़ते रहते हैं, हिसाब किताब, ये तो पूरी किताब आप पढ़ लीजिए, बुक है हिसाब किताब से मुतल्लिक, इस पे बहुत कुछ कहा सुना गया है। अल्लाह करे कुरान पढ़ने के बाद हमें इसका यकीन आ जाए, पेश भी होना है। पूरा तीसरा पारा आप इसके रेफरेंसेस में नोट करते जाएं, उसी के आयतों को लिख के ले आएं तो वही सारा कुछ इसमें जमा होगा। लेकिन याद रखिए कि दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमारा आसान हिसाब ले। सबसे मुश्किल चीज़ जो होगी ना वो पुल सरात होगी। तो सवाल है कि पुल सरात से क्या मुराद है? तो पुल सरात क्या है? जहन्नुम के ऊपर का एक ब्रिज है। वहीम मिन को मिल्ला वारी दुहा, तुम में से हर एक को उस पे से गुजरना है, फिर हर बंदे को उसके मुताबिक वहाँ से गुजारा जाएगा, हर नफ्स के साथ वैसा ही किया जाएगा जैसा वो डिजर्व करेगा। अल्लाह ताला क़यामत के दिन इस मुकाम पे बंदे को लाएगा। और आयत है सूरत मरियम 71-72, हर बंदा पुल सरात से गुजरेगा, स्लिपरी होगा, अंधेरे में होगा, कांटे हैं उस पे, नीचे आग जल रही है और ऊपर से आप अंधेरों में गुजर रहे हैं। वहाँ फिर दुआएं होंगी, रब्बना अतमिम लना नूरना, सूरत तहरीम और सूरत हदीद। वहाँ मुनाफिकों का नूर बुझा दिया जाएगा, किसी का नूर सिर्फ उसके पाँव के अंगूठे पे रह जाएगा, टिम टिम करता। कुछ शुरू में नूर में होंगे, बीच पहुँचेंगे अंधेरा, घड़ाम से जहन्नुम में गिर जाएंगे। तो पुल सरात इज़ अ डिसेक्शन रूम, वहाँ आखिरी सफाइयाँ होनी है, गंदे खून और गंदी आदत वहाँ से निकलेंगी। और पुल सरात का आखिरी कोना उसको कंतरा कहते हैं, वहाँ रिश्तेदारियों के और हकूक़ुल इबाद के मामले निपटेंगे। वहाँ लोग एक दूसरे की नेकियाँ मांग रहे होंगे कि हमें ये दीजिए और हमें वो दें। और उसके बाद फिर या जन्नत है या जहन्नम। सवाल पैदा होता है जन्नत और जहन्नम पर ईमान लाने से क्या मुराद है? दोनों हक है, दोनों में लोग जाएंगे। आज के दौर में ये भी एक अल्लाह के साथ नरमी का मामला क्या किया, जहन्नुम है ही नहीं। इफ़ गॉड इज़ सो मर्सीफुल सो हाउ कैन ही पुट द पीपल इन द फायर। ये आप अपनी अकल से समझते हैं, ये भी तो देखिए कि अल्लाह ने उनको कितने रिसेप्टर्स दिए थे, लेकिन उन्होंने इसके बावजूद भी रब को नहीं माना, तो जन्नत आज भी मौजूद है, जहन्नम भी मौजूद है, दोनों में लोग जाएंगे और दोनों को बिलाखिर भरा जाएगा। जन्नत के लिए तो अल्लाह एक नई मखलूक पैदा करेगा, किस तरह से अल्लाह ताला उनको लेगा, और जहन्नुम में भी लोग आएंगे, ये सारा आप डिस्क्रिप्शन में पढ़ें। और इससे मुतल्लिक जितने भी लेक्चर्स हैं वो इस लिंक के साथ हम इधर उधर डाल सकते हैं, आप एक एक लेक्चर पढ़ते जाएं, सुनते जाएं, इंशाल्लाह आपको इसमें मिलेगा। क्योंकि अब फिर वही बात है कि अमल की बातें हैं ना, इस कोर्स में हम स्टोरीज नहीं डिस्कस कर सकते, डिटेल्स नहीं ले सकते, लेकिन ये है असल चीज़ जो आपको मुझे सीधा रखेगी। आप जन्नत को अगर अपनी आंखों से देखें, सहाबा को तो दिखती थी, हमें नहीं दिखती, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी जन्नतें हैं। हमने अपनी इस दुनिया को इतना खूबसूरत कर लिया, यहाँ से जाने का यकीन ही नहीं आता कि हम जाएंगे। हालांकि आपको था कि जन्नत का एक घर दुनिया के इन घरों में उसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। फला तअलमु नफ्सुम मा उख्फिया लहुम मिन कुर्रति आयुन, कोई नफ्स नहीं जानता कि उसकी आंखों की ठंडक के लिए अल्लाह ने तैयार क्या किया। असल ये दुआ करें कि अल्लाह हमें उसका यकीन दिला दे। सूरह सजदा आयत 17 है, रात को पढ़ते होंगे ना सोने से पहले, तो उस वक्त बंदे को यकीन आता है कि अल्लाह ने ये सब कुछ मेरे लिए जो सामने रखा है उसकी वजह क्या थी। फिर इसी तरह जहन्नुम भी सच है, मानिए ना माने, ट्रूथ इज़ बिटर बट इट्स है, सच है, जहन्नुम भी है। और जहन्नुम इतनी कड़वी, इतनी काली है कि उसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। सही रिवायत से पता चलता है कि इसको 1,000 साल जलाने के बाद फरिश्ते ने आकर पूछा तो कहा भी और जलाओ। 3,000 साल तक जहन्नम जलाई गई, काली, अंधेरा, हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता, और उसमें एक कह लीजिए कि जहन्नम का एक हिस्सा दूसरे हिस्से को खा रहा है। जैसे बर्तन खाली चूल्हे पे पड़ा रहे तो बर्तन ही जल जाता, और हर रोज जहन्नम अपने लिए खाना मांगती है। अल्लाह अकबर। और अल्लाह सुबहाना तला ने जन्नत और जहन्नम के बहुत सारे नाम भी दिए हैं ना, जन्नत मावा, जन्नत अदन, जन्नत नईम, दारुस्सलाम, दारुल खुल्द, जन्नतुल फिरदौस। रहमतुल्लाह का नाम आपने कभी नहीं सुना होगा, तो आज नोट कर लें। बाकी सारे नाम कुरान में हैं, लिखाना चाहूँ तो लिखा दूँ, लेकिन आप ख़ुद भी नोट कर सकते हैं। मावा का लफ्ज़ नजम 15, अदन, मरियम 61, तौबा 72, जन्नत नईम, लुकमान 8, दारुस्सलाम सूरत अलनाम 127, और यूनस 25, दारुल खुल्द हूद 108, हिजर 48, और फिरदौस सूरह कहफ 108। ये रहमतुल्लाह कहाँ है इसको सुन लीजिए, ये हाफिज़ इब्ने क़य्यम रहिमहुल्लाह का कौल है। कहते हैं कि जन्नत को रहमत से, रहमत के लिए बनाया गया, और इसको अहले रहमत से ख़ास किया गया, लिहाजा अर्रहमा। अर्रहमा कौन होते हैं? जिन पर रहम कर दिया गया वो उसमें दाखिल होंगे। ये उनकी बहुत प्यारी किताब है बदायुल फवाइद, उसकी जिल्द 2 157 पेज पे आप देख सकते हैं। तो जन्नत का एक नाम रहमतुल्ला भी है, सही मुस्लिम 7172। जन्नत है किधर? आसमान पे। सूरत नजम 13 से 15, वलकद राहु नज़लतन उख्रा इंद सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मावा। वुसत भी है, दरवाजे जन्नत के 8 हैं, खुले हुए हैं, एक दरख्त है तूबा नाम का जहाँ से जन्नतियों के कपड़े बनाए जा रहे हैं। क्या कुछ है, अभी आपने, मैंने तो उसको लिया ही नहीं। और जन्नत की मट्टी जो कंकर है ना, वो लूलू और मोती के हैं। आज हम मिट्टी चूने के घरों पर रीत जाते हैं, असल जन्नत का घर देख लें तो क्या होगा। और आपको कहते हैं जो सबसे पहला गिरोह जन्नत में जाएगा उसके चेहरे 14वीं रात के चांद की तरह चमक रहे होंगे, फरिश्ते दरवाजों पर इस्तकबाल कर रहे होंगे, और रिजवान जन्नत के दारोगा का नाम वो सबसे आगे होंगे। कितना कुछ अल्लाह आपके लिए, मेरे लिए तैयार करके हमें देता है, और कुरान नहीं पढ़ेंगे तो हमें इसका यकीन भी नहीं आएगा। वसीला जन्नत का आला तरीन मुकाम है जो सिर्फ नबी सल्लम को मिलेगा, मुस्नद अहमद 7588। और याद रखिए कि जन्नत में एक मोती का खेमा होगा, बुलंदी आसमान की तरफ 60 मील, 60 माइल, चौड़ाई भी 60, और मोमिन के घर वाले उसमें रहेंगे, और वो इसके इर्द गिर्द चक्कर लगाएगा, इतना बड़ा है कि एक दूसरे को नहीं देख सकेगा। ये सही मुस्लिम की रिवायत का खुलासा है 7159। अल्लाह अकबर। और सबसे बड़ी नेमत जन्नत की क्या है? मुस्लिम की रिवायत है 7146 अनस से कि जन्नत में एक बाजार है जिसमें जन्नती लोग हर जुमे के दिन जाएंगे, वहाँ जुमा होगा, और उसको यौमुल मजीद कहते हैं। जन्नत का जो जुमा है उसको यौमुल मजीद है, उस दिन जन्नती अल्लाह का दीदार करेंगे। तो दीदार इलाही क्या है कि जिस दिन अल्लाह से मुलाकात होगी, कुछ की तो हर वीक ही होगी, अल्लाह जानता है कौन किस जगह कैसे होगा, लेकिन बहुत कुछ मौजूद है। और जब जन्नती अल्लाह ताला का दीदार करके आएंगे तो फिर उनका हुसन पहले से ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये सही मुस्लिम की रिवायत 7146 आप पढ़ सकते हैं। दुआ कीजिए कि हमें ये लज्जत लग जाए। आपकी शीट में दुआ है, मिलके पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सलुका लज्जतन नजरी इला वजही का व शौका इला लिकाइक। ए अल्लाह, मैं तुझसे सवाल करती हूँ तेरे चेहरे की लज्जत का, यानी लज्जत मेरी आंखों को जो मिले तेरे चेहरे को देखकर, और शौक तेरी मुलाकात का। बहुत प्यारी। आप देखिए कि इसको अगर आप अपने इस नज़रों में रखते हैं तो इसको आते जाते पढ़ा करें। ये शौक भी आज पैदा करने की ज़रूरत है। और जन्नतियों के कपड़े और लिबास और वो सब कुछ, इसको हम यहीं रैप अप करते हैं। ये इतना बड़ा मौजू है कि हम इसको समेट नहीं सकते। बस ये दुआ कर लें कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नतल फिरदौसी बग़ैरी हिसाब। और फिर जहन्नुम का मौजू स्किप कर रही हूँ, उसमें भी इतने कुछ है, कीड़े, सांप और बिच्छू, यानी वो तो ऐसी चीज़ है कि जिसके बारे में एक इंसान सोच ही नहीं सकता। तो इंशाल्लाह उसको तो आप डिफरेंट चीज़ों से फिल करेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी डिटेल से फिर भी हमने ईमान बिल आखिरा को देख लिया।